Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाशपद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ ॐ कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत छठे अध्याय में बारहवां मंत्र है। एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। सुख कैसे प्राप्त किया जाए? संसार के सभी प्राणी निर्विवाद रूप से इस बात में सभी का एक ही लक्ष्य है कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए। चींटी चीनी से सुखी होना चाहती है और हाथी घास से सुखी होना चाहता है, ऊंट नीम के पत्ते से, बबूल और किक्कर के पत्ते से सुखी होना चाहता है, और हम लोग किससे सुखी होना चाहते हैं? केरी का रस और पूरी, उससे सुखी होना चाहते हैं। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, सभी का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माध्यम और साधन अलग अलग हैं। और जिन जिन साधनों के द्वारा सुखी होते हैं वह सुख, क्योंकि वह साधन स्वयं अनित्य है इसलिए वह सुख अनित्य है। इसलिए चाहते सुखी होना, परिणाम में दुख हो जाता है, क्योंकि विषयजन्य जो सुख है वह परिणाम में दुख देने वाला है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने राजसिक सुख कहा। विषय इंद्रिय संयोगात एतत् अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम्। इंद्रिय और विषयों के संयोग काल में ऐसा लगता है कि शायद यही अमृत है, इससे आगे और कि हम सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, और हम उसी को सुख मान लेते हैं। जोर से बारिश हो रही है, हाथ में छतरी है तो बस आनंद आ गया, फट से छतरी खोल ली और हम समझते हैं कि वह सुखी हो गए। बेचारे जिसके पास छतरी नहीं है भीज रहे हैं, बेचारा देखो कितना दुखी है, बेचारे उसके पास एक छतरी भी नहीं है, कितना कष्ट है, भीज रहा है, और अपनी छतरी होने का अपने को इतना अनुभव हो रहा है कि बस कि हम कम से कम नहीं भीज रहे हैं, और भीजते हुए को देखते हैं तो हम कहते हैं कि कितना दुखी है। प्रारब्ध से मिला हुआ है, जब हम उसको भोगते हैं तब कहते हैं क्या आनंद आ गया, ठीक समय में भोजन मिल गया तो सुखी हो गए। और जिस किसी को समय में भोजन नहीं मिलती है और मांगने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि बेचारा कितना दुखी है, वो उसको अपने समय में भोजन नहीं है। ये सब के सब जो सुखी और दुखी का परिभाषा है व्यक्ति लोग करते हैं वो तो सापेक्ष है, विषयगत, ये सुख विषयगत दुख। श्रुति ने कहा कि संसार में उसी व्यक्ति को शाश्वत सुख मिल सकता है जिसने तम आत्मस्तम ये अनुपस्यन्ति धीरा, जिस धीर पुरुष ने उस तत्व को अपने ही हृदय में विद्यमान के रूप में जानता है तभी उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। जब तक हृदयस्थ उस आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक उसको विषयगत सुख तो बहुत हो सकते हैं, परिवर्तित सुख तो बहुत हो सकते हैं, बदलते हुए सुख तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन निर्विषयक सुख और अपरिवर्तित सुख की अनुभूति वो प्राप्त नहीं कर सकता है। किसको देखना है तो बोले एको वसी ही, अनेकों को देखोगे तो दुख होगा ही होगा, क्योंकि अनेक में राग और द्वेष बनता है। जहां अनेक है वहां राग द्वेष होता है। किसी वस्तु को हम लेने जाते हैं दुकान में, जब उसके अनेक विकल्प खड़े होते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उसको खोजते रहते हैं, देखते रहते हैं, ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है कि, तो बहुत घंटों छटनी शुरू कर देते हैं। हमारा लक्ष्य है कमीज खरीदना है तो घंटों क्या लगाना है, सभी तो कमीज हैं, तुम्हें कमीज चाहिए दुकान में कमीज है, लेकिन वो कमीज केवल एक होती तब तो हट से गए, वो कमीज उठाया, पैसा दिया और पहन लिया चल पड़े। जब दुकानदार हजार कमीज रख देता है तो छंटनी करने में घंटों लग जाता है, ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है कि, तो बड़ा मुश्किल से एक को चुनाव करता क्योंकि वह एक को चाहता था, लेकिन वहां अनेक दिखाई पड़े इसलिए उसको विकल्प होता है, परेशानी होती है। चाहता था कमीज, लेना है एक ही कमीज, दुकान वाला बहुत से कमीज दिखाई देता है, दिखा देता है तो फिर झंझट शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम जब पैदल यात्रा कैलाश की यात्रा कर रहे थे तो 30-32 दिन पैदल यात्रा करनी है पहाड़ की यात्रा, तो कपड़े का जो जूता था वह तो चलते चलते आगे से सब घिस गया और फट गया। जब तिब्बत पहुंचे तकलकोट तो जूता तो फट गया, अब क्या करें? तो वहां एक दुकान में गए, तुम्हारे पास जूता है? तो हमको चाहिए था जूता, उससे पूछा तुम्हारे पास जूता है? तो उसने एक जूता लाके दिखा दिया। तो हमने कहा कोई दूसरा है दिखाओ, वो थोड़ा हमको पसंद नहीं आया। तो हमने कहा दूसरा है? बोले है ही नहीं, यही एक है। तो हम पैसा दिए और तो पहन लिया, चल पड़े। वो विकल्प नहीं है तो कोई झंझट ही नहीं रही। शायद वो अभी यदि 10-20 दिखाता तो घंटों लगता हमको। तो संसार में क्योंकि अनेक विकल्प हैं, इन्हीं विकल्पों में हम उलझे रहते हैं, शायद इससे, शायद इससे, शायद ये ठीक है, शायद ये ठीक है। सुखी होने के लिए ये विकल्पों में मत भटको, ये कहा बस। एको वसी, शाश्वत सुख देने वाला वस्तु तुम्हारे पास एक ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और जहां विकल्प हैं वो कभी भी तुम्हें शाश्वत सुख देने में समर्थ नहीं है। सब जगह विकल्प हैं। मुंबई में घर खरीदनी हो तो इतनी फ्लैट देखनी पड़ती है। वो देखा, कहते ये तो पूर्व साइड खुला है, ये देखा वो पश्चिम साइड खुला है, ये दक्षिण साइड खुला है। कभी ये कहा, कभी वो कहा, कभी लिफ्ट छोटी है, कभी पार्किंग नहीं है, हजार विकल्प है। एको वसी ही, वह एक है भाई, क्योंकि आत्मा एक है। अभी अभी मैं आ रहा था तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी की कैसेट चल रही थी, तो एक दृष्टांत दिया महाराज जी ने, फट से सुना मैंने, कान में पड़े वो शब्द। स्वामी राम तीर्थ जी से कोई जाकर पूछा, महाराज ब्रह्म है इसमें क्या प्रमाण है? किसी ने पूछा होगा, परमात्मा है इसमें क्या प्रमाण है, आत्मा है इसमें क्या प्रमाण है? तो राम तीर्थ जी ने कहा कि मैं ही प्रमाण हूं, और क्या प्रमाण है? आत्मा है इस बात को और क्या प्रमाण हो सकता है? आत्मा है इस बात को क्या आंख प्रमाणित कर सकती है? आत्मा को आंख तो ये प्रमाणित कर सकती है कि ये फूल है, फूल की माला है, ये पीले फूल है, ये सफेद फूल है, ये हरे पत्ते हैं, आंख तो ये प्रमाण कर सकती है। और आंख के प्रमाण से तुम यदि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहो, जानना चाहो, तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि आंख जिसको प्रमाणित करती है वो ब्रह्म नहीं होगा, वो फिर जड़ होंगे, विषय होंगे, अनात्मा होंगे। फिर ब्रह्म है, आत्मा है, इसमें प्रमाण क्या है? बोले मैं हूं। बोले आप कैसे प्रमाण है? बोले अच्छी बात है, हम नहीं है तो तुम हो, इससे अलावा और क्या प्रमाण देंगे? तो खुद है और ये ब्रह्म, फिर क्या प्रमाण है? बोलता है मैं हूं, इसमें क्या प्रमाण है पूछते हो तुम? खुद अपने बारे में तुम्हें प्रमाण चाहिए तो तुमसे बढ़कर कोई दूर का दूसरा मूर्ख खोजने कहां जाएंगे हम भाई? है? तुमको खुद अपने बारे में प्रमाण चाहिए, और के बारे में प्रमाण खोजो तो बात अलग चीज है। बोले हम तो है ही हैं लेकिन ब्रह्म के बारे में प्रमाण खोज रहे हैं। अरे मूर्ख, तुमको ब्रह्म से अलग किसने कहा और तुमसे ब्रह्म को अलग किसने कहा? दुनिया में टोटल एक ही तो वस्तु है, चाहे उसको ब्रह्म कह दो, चाहे उसको तुम कह दो, चाहे तुम अपने को अहम कहो, उसके अलावा वो एक के अलावा और कुछ भी नहीं, सब उसी का खेल है। एको वशी ही, साथ साथ में वो वशी है, एक है और वशी है। वशी शब्द का अर्थ होता है सबको अपने वश में, अपने अधीन में लेने वाला। वश का शब्द अर्थ होता है सबको अपने अधीन में लेने वाला। अधीन में वो किस तरह लेता है, ऐसा नहीं समझ लेना कि किसी अपराधी को पुलिस अपने हथकड़ी लगाकर अपने अधीन में लेता है। इस तरह ब्रह्म परमात्मा सबको अपने अधीन में लेता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार में जितने भी नाम रूप हैं वो सत्ता प्रदान करके उनको सब अपनी सत्ता में लेता है, अपनी सत्ता से उसको बाहर जाने ही नहीं देता। क्योंकि कोई भी पदार्थ उसकी सत्ता से बाहर निकल गया कि वो पदार्थ असत हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ की जो अस्तित्व है सत्ता है। जैसे आप कहते हो कि फूल की माला है, हमने कई बार कहा है फूल की माला तो फूल की माला दिख रही है क्या है, उसने फूल की माला को भी है के माध्यम से अपनी सत्ता में ले ली है। इसकी होना पना वो उसकी सत्ता में निर्भर होने के कारण, उसने इस माले को अपने अधीन में लिया हुआ होने के कारण वो वसी है। तो संसार में जितनी भी अस्थिभाति प्रिय के रूप में उसने नाम रूपों को अस्थिभाति प्रिय के रूप में अपने बस में रखा है। यदि उसके बस में ना रहे तो पदार्थ नास्ति हो जाएगा, अस्थि कहीं नहीं पाओगे उस पदार्थ को। यदि उसने अपने सत्ता में नहीं लिया होता तो उसको फिर नहीं कहोगे, है कहीं नहीं पाओगे। और यहां तक कि वेदांत कहता है जिस पदार्थों को तुम अभाव सिद्ध कर रहे हो वो अभाव भी उसी की सत्ता में सिद्ध है। भाव माने पदार्थों के होनापना, अभाव अर्थात पदार्थों के न होनापना। पदार्थ के होने पने को भी उसी के द्वारा सिद्ध होने के कारण सारे पदार्थों को अपने बस में रखा है, और पदार्थ के न होने पना को भी उसने अपने बस में, यानी पदार्थ के अभाव भी उसी के द्वारा सिद्ध है। अन्यथा अभाव किसके द्वारा सिद्ध होगा, अन्यथा अभाव किसी के द्वारा सिद्ध नहीं होगा। अभाव को भी सिद्ध किया है, इसलिए वेदांत एक ऐसा दर्शन है जिसने अज्ञान को, अंधकार को भी भाव रूप में, पदार्थों के रूप में लिया है, अन्यथा और कोई लेते नहीं है। जैसे आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान अंधकार को प्रकाश का अभाव कहते हैं। अंधकार स्वतंत्र कोई पदार्थ नहीं है, कोई मेटेरियल नहीं है, वो प्रकाश का अभाव है। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है, स्वतंत्र अंधकार का अस्तित्व नहीं है। तो वेदांत ये कहता है कि वो अंधकार है जो कह रहे हो, वो अभाव भी भाव रूप है, अभाव भी एक भाव रूप पदार्थ है। क्योंकि कोई भी पदार्थ अस्तित्व में रहे बिना प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो सकता है। प्रवृत्ति निवृत्ति के कारण जो पदार्थ हैं वो सभी भाव रूप होना चाहिए। अभाव रूप पदार्थ प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण नहीं होता। इस हॉल में मुझे लगता है गिरीश भाई का अभाव है, गिरीश भाई ड्रेस वाले का इस हॉल में अभाव है। अब कोई व्यक्ति गिरीश भाई को खोजते यहां आएगा कि गिरीश भाई यहां आए, तो आप कहोगे कि गिरीश भाई नहीं है। इसका मतलब हो गया गिरीश भाई का इस हॉल में अभाव है। उस अभाव को देखकर वो व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा, चला जाएगा वापस। उसको वापस करने में कारण क्या बना, तो उनका अभाव। उसको यहां रोके रखने में कारण क्या हुआ, तो उनका भाव। यदि वो यहां होते तो उनसे काम करने, कुछ बात कहने के लिए वो रुका रहता, अब वह नहीं है तो वो चला गया। तो प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण भाव पदार्थ हुए बिना प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती। अभाव भी प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु होने के कारण अभाव भी स्वतंत्र रूप में भाव पदार्थ है, उस परमात्मा ने सबको अपने बस में रखा है। किस रूप में बस में रखा है? जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पूरे गाड़ी को अपने नियंत्रण में रखता है, तो ड्राइवर उस गाड़ी का क्या हो गया? वशी। रथ चलाने वाला सारथी घोड़े और रथों को सब अपने लगाम के माध्यम से अपने नियंत्रण में लेता है, तो सारथी क्या हुआ? वशी। इस तरह परमात्मा सारे पदार्थों को लगाम के माध्यम से निरंतर नियंत्रण में लेता है, ऐसा नहीं समझना। अस्थि भाति प्रिय से उसको बाहर निकलने नहीं देता। यदि अस्थि भाति प्रिय से बाहर निकल गया, भाति से बाहर निकल गया, तो वो पदार्थ प्रतीत ही नहीं होगा, जाना ही नहीं जाएगा। प्रियता से बाहर निकल गया तो वो पदार्थ को फिर कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इस माला में प्रियता थी तभी आपने खरीदी, ये माला में प्रियता थी तभी हम गले में लगा दिया, इस माले में कोई प्रियता थी तभी हमने गर्दन लंबा किया। यदि प्रियता न होती तो फिर हम किसको गले में स्वीकार करते? और आप कहोगे कि कोई कोई पदार्थ में प्रियता नहीं होती है महाराज। बोले ऐसा नहीं है, जिस पदार्थ में तुम्हारे दृष्टि से प्रियता न हो, दूसरे के दृष्टि से उसमें प्रियता विद्यमान होने के कारण जगत के किसी भी पदार्थ में प्रियता है नहीं, ये कह ही नहीं सकते हो। क्योंकि ब्रह्म जैसे व्यापक है, उसी तरह हर पदार्थ में प्रियता व्यापक है। यदि ब्रह्म परिच्छिन्न होता तो किसी पदार्थ में प्रियता है और किसी पदार्थ में प्रियता नहीं है, ये कहा जा सकता। एक तरफ तुम ब्रह्म को व्यापक मानते हो, दूसरी तरफ पदार्थ में प्रियता नहीं है कहते हो, तो ब्रह्म की व्यापकता बाद हो गई। ब्रह्म पदार्थ में ब्रह्म की अस्तित्व यानी सत्ता को स्वीकार करते हो तो उस पदार्थ में ब्रह्म के प्रियता भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म का जो अस्थि भाति जो प्रिय है, सत्ता सर्वत्र रहे, प्रियता कहीं रहे कहीं न रहे, ऐसा संभव नहीं है। सत्ता सर्वत्र रहे, भातिता कहीं रहे और कहीं न रहे, ये संभव नहीं है। सत्ता सर्वत्र है तो भातिता भी सर्वत्र है और प्रियता भी सर्वत्र है। उसी रूप में सारे पदार्थों को परमात्मा अपने बस में रखता है। जैसे सारे जगत के जितने भी वस्तुएं हैं, समुद्र से लेकर पर्वत पर्यंत, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, सबको आकाश अपने बस में रखता है, क्योंकि सभी पदार्थ आकाश के अंदर अस्तित्व में हैं। आकाश के अंदर अस्तित्व में होने के कारण सारे पदार्थों को आकाश ने अपनी चपेट में ले लिया, अपने बस में ले लिया, इसलिए सारे पदार्थों के सामने आकाश वशी हो गया। लेकिन तो पांच महाभूत है, अहंकार है, महतत्व है, अव्यक्त है, सबको भी बस में लेने वाला वही तो है। अव्यक्त कहां है, महतत्व कहां है, अहंकार कहां है, आकाश आदि पृथ्वी पर्यंत भूत कहां है? जिस सत्ता में सत्तावान हुए हैं वही उन सारे पदार्थों का वश करता है, इसलिए वह वशी है। वो एक है, वश्य अनेक है, वशी एक है। वश्य माने दूसरे के अधीन में रहना, ये रहने वाले पदार्थ अनेक हैं। तुम्हारा शरीर स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के अधीन में रहने वाला है। तुम्हारा मकान स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के अधीन में रहने वाला है। मकान किसके अधीन में रह रहा है? तो ईंट के अधीन में, पत्थर के अधीन में, बालुआ के अधीन में, सीमेंट के अधीन में, छड़ के अधीन में, इन सब के संयोग से बना हुआ होने के कारण इस सबके अधीन में है। धीरे धीरे प्लास्टर निकलने लग जाए तो मकान खिसकने लग जाएगा, धीरे धीरे ईंट गिरने लग जाए तो मकान खिसकने लग जाएगा, और इन सब के मिलते हुए भी वो पराधीन है, क्योंकि ये भी सब पराधीन है। किसके? तो बोले पृथ्वी के अधीन है। पृथ्वी किसके अधीन है? जल के अधीन है। जल किसके अधीन है? देश के अधीन है। अब आपको समझ में आ गई वेदांत? ये आपका कपड़ा पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। कपड़ा किस पर आश्रित है, किसके अधीन में है? तुम कहोगे कि मेरे अधीन में। तुम्हारे अधीन में नहीं है, धागे के अधीन में है। कपड़ा तुम्हारे अधीन में है? कपड़ा तुम्हारे अधीन में नहीं, कपड़ा धागे के अधीन में। तो इसका मतलब धागा तो स्वतंत्र हो गया। बोले भाई कपड़े के अपेक्षा स्वतंत्र है, खुद धागा पराधीन है। किसके अधीन में मारा धागा? बोले कपास के अधीन में है। अब जाओ तुमको वेदांती समझ में आ जाएगी। इसी तरह जाओ कौन किसके अधीन में है। कपास किसके अधीन में है? तो मिट्टी के अधीन में। मिट्टी किसके अधीन में है? तो जल के अधीन में। चले जाओ धीरे धीरे तो फिर अव्यक्त किसके अधीन में है? उसे अधिष्ठान के अधीन में, जिससे अव्यक्त अव्यक्त बना, जिससे अव्यक्त अस्तित्व में है, भांति में आ गया। इसलिए वह सबका वसी है, सबको अपने अधीन में लेता है। किस रूप में? तो अपने हमने एग्जाम्पल दे दिया है, कपड़े को परमात्मा ने अपने अधीन में रखा है। किस रूप में? परंपरा, कपड़े को अधीन करने वाला धागा, धागे को अधीन में रखने वाला कपास, कपास को अपने अधीन में रखने वाले पृथ्वी मिट्टी। तो इन सब को अपने अधीन में रखने वाला अव्यक्त माया प्रकृति, उसको भी अपने अधीन में रखने वाला परमात्मा। तो क्या हुआ? वो बसी। और इन सब को अपने अधीन में रखने के लिए परमात्मा ने कितनी को लगाया? बोले किसी को नहीं, एको बसी, अकेले उसका बसी है। एको बसी निष्क्रियाणाम बहुनाम, बहुनाम निष्क्रियाणाम। शंकराचार्य जी ने निष्क्रियाणाम शब्द का अर्थ जड़ नहीं किया। जितने भी जीव हैं सभी जीवात्मा हैं, ये सब भी निष्क्रिय ही हैं।